शांति। आज हमारी वठी के बीच विशेष राजयोगिनी डॉक्टर सविता बहन पधारे हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से बहुत बहुत दिल से आपका स्वागत करते हैं। आप करीब 42 साल से बाबा के इस ज्ञान में चलते हो, खास कोटा सेंटर से आपने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया और राजस्थान यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री भी प्राप्त की। 28 साल से इस बाबा के यज्ञ में समर्पित हो और करीब 10 साल आपने ग्लोबल हॉस्पिटल में भी सेवाएं दी। उसके बाद हमारी बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी की हेल्थ केयर के लिए आप उपस्थित रहे, बहुत अच्छी अंत तक आपने भी दादी जी की संभाल की। और साथ साथ जो भी नए भाई बहन राजयोग शिविर में आते हैं उन्हों की भी क्लास आप लेते हो, और हमारी जो महिला विंग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हो, जिस कारण कई महिलाओं के प्रोग्राम्स अभियान है या सम्मेलन है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है। देश विदेश की सेवाओं में आप बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हो। तो आज आपकी इस सभा में हम यही महिमा के साथ बाद में क्लास शुरू करेंगे कि शीतलता से भरपूर चांद हो आप, हमारी आज की सभा की शान हो आप। तो आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। स्वागत है आपका। आज का विषय है अशरीरी और फरिश्ता स्थिति। इस पर आप बहुत ही अच्छी तरह से सबके सामने स्पष्टीकरण करेंगे।
ओम शांति। पांडव भवन की भट्टी में आए हैं। मैं समझती हूँ बहुत सारे भाई बहने तो शायद पहली बार पांडव भवन में आके रहे होंगे। हैं, आप में कोई ऐसे भाई बहन जो पहली बार पांडव भवन में रह रहे हैं? देखिए कितने हैं। तो ये अनुभव अपने आप ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराने वाला है। कैसा लग रहा है पांडव भवन में रहना? बाबा को याद करना पड़ता है या बाबा अपने आप याद आता है? याद आता है। हम भी कई साल रहे हैं यहाँ पर। मुझे याद है मैं 1990 से 2001 तक पांडव भवन में रही हूँ और ऐसा ही लगता था कि भगवान सतयुग तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन उन्होंने अभी हमको सतयुग में रख दिया है, क्योंकि सभी दादियों की छत्र छाया थी यहाँ पर। सभी दादियाँ थे उस समय, और खास बड़ी दादी दादी प्रकाशमणि जी के नजदीक बहुत रहने का बाबा ने ड्रामा में सौभाग्य दिया। तो ये पांडव भवन की भूमि ऐसी भूमि है क्योंकि ये स्वयं ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि है, तपस्या भूमि है, और उसके साथ साथ हमारी सब दादियों की भी कर्म भूमि रही है। तो इसका वाइब्रेशन वायुमंडल इतना पावन और पावरफुल है कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जब हम विषय की बात करते हैं तो बाबा ने हमको पहला पाठ ही पढ़ाया है, मैं आत्मा हूं, और सिर्फ पढ़ाकर नहीं छोड़ दिया, हर रोज पक्का कराते हैं। कोई दिन मुरली में ऐसा नहीं होता जिस दिन ये ना आता हो कि देही अभिमानी बनो या मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति बाबा ने नहीं दिलाई हो। शायद मुरली शुरू ही उससे होती है, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। कितना याद रहता है, कितना याद रहता है। देह अभिमान के संस्कार इतने पक्के हैं कि एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर। आत्मा कब याद रहती है, कब याद रहती है? जब योग में बैठते हैं तब सोचते हैं बिना आत्मा समझे तो योग नहीं लगेगा, क्योंकि बाबा ने वो शर्त ही बताई है कि आत्मा समझेंगे तो ही बाबा से कनेक्शन हो सकता है। तो उस समय थोड़ा टेंशन रखते हैं कि मैं अपने आप को आत्मा समझूं, और कई बार तो अगर व्यर्थ संकल्पों में मन उलझा है तो वो अटेंशन भी सिर्फ एक संकल्प तक रह जाता है, मैं आत्मा हूँ सिर्फ वहां तक रह जाता है और फिर हम कहीं और। तो इसके लिए विशेष क्या चाहिए? देह अभिमान के जो 63 जन्मों के संस्कार हैं, जो नेचुरल हैं, अभी वो संस्कार नेचुरल हैं, ऐसे ही मैं आत्मा नेचुरल स्मृति बन जाए, उसके लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा? तभी अशरीरी स्थिति बनेगी, क्योंकि पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा ना। अशरीरी अव्यक्त स्थिति का पहला स्टेप कौन सा है? राजयोग अभ्यास का पहला स्टेप कौन सा है? आत्मा समझना। दूसरों को भी हम राजयोग सिखाते हैं तो क्या कहते हैं? पहले अपने आप को क्या समझो? आत्मा समझो। राजयोग की यात्रा जो है वो आत्मा समझने से ही शुरू होती है। तो जो हम दूसरों को पढ़ाते हैं, पहले किसको पढ़ाना है? अपने आप को पढ़ाना है। तो केवल योग के समय का टेंशन नहीं, योग के समय बैठे मैंने आत्मा समझने की कोशिश की, फिर सारा दिन कर्म कॉन्शियस हो गए या बॉडी कॉन्शियस हो गए, फिर शाम को जब योग में बैठे तब याद आया, अरे सारा दिन तो बाबा याद ही नहीं था, सारे दिन तो बुद्धि देह अभिमान में रही, तो क्या होने वाला है? जो हमारे पुराने संस्कार हैं, विकारी संस्कार हैं, वो इमर्ज होते रहेंगे, क्योंकि देह अभिमान विकारों की जड़ है। बुद्धि देह अभिमान में गई तो विकार कब इमर्ज हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। फिर हम सोचते रहते हैं बहुत मेहनत तो करते हैं, फिर भी तो गुस्सा ही आता है, फिर भी तो चिढ़ते ही हैं, फिर भी तो मन अशांत होता है, फिर भी तो इतना जल्दी दुखी हो जाते हैं, इतना पुरुषार्थ करते, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? आत्म अभिमान ही गुणों का विकास करता है, आत्मिक स्थिति में ही गुण इमर्ज होते हैं। तो इसलिए बाबा हमें हर घंटे में कम से कम कुछ मिनट जरूर हम अशरीरी स्थिति का अनुभव करें, निराकारी स्थिति का अनुभव करें या आत्मिक स्थिति का अनुभव करें, ऐसा कहते हैं। और इसीलिए ये 1 घंटे का ट्रैफिक कंट्रोल शुरू हुआ था। मुझे याद है बाबा ने एक मुरली चलाई थी, तब बड़ी दादी थे, दादी प्रकाशमणि थे, तब दादी ने ही मधुबन में ये हर घंटे में 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल सिर्फ अशरीरी स्थिति के अभ्यास के लिए, कि हमारा अटेंशन जाए, ये ट्रैफिक कंट्रोल शुरू कराया था। लेकिन जो मेन ट्रैफिक कंट्रोल है, चलो हम, मैं नहीं समझती अपने स्थानों पर हम 1-1 घंटे वाला ये ट्रैफिक कंट्रोल करते होंगे, बट मेन ट्रैफिक कंट्रोल का तो हम ध्यान रखते हैं। क्या उस ट्रैफिक कंट्रोल में भी मेरी अशरीरी स्थिति या आत्मिक स्थिति का अनुभव हम कर लेते हैं? चलो पूरा समय नहीं कर पाते, कम से कम अटेंशन तो जाता है, है ना? तो वो अपना प्रोग्राम हमें खुद सेट करना है, और आजकल तो बहुत साधन है, हम कर सकते हैं। आजकल मोबाइल सबके हाथ में होता है ना, मोबाइल में अगर आपने सेट कर दिया हर घंटे, वो आपको अलार्म दे देगा कि हाँ अब आपका वो टाइम हो गया, आपको उस स्मृति में स्थित होना है। तो अभ्यास और अटेंशन, ये 2 बातें हैं, और जितना हम शुरू में मेहनत करेंगे, शुरू में हमें मेहनत करनी पड़ती है, किसी भी संस्कार को बनाने में पहले मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब वो संस्कार बन जाएगा तो अपने आप नेचुरल होता है। जैसे और आदतें हमारी नेचुरल होती हैं, हमें सोचना नहीं पड़ता उनके बारे में, तो ये आत्मिक स्थिति भी इसी तरह से होगी। और हम आत्मिक स्थिति में जितना अधिक रहते हैं उतना ही दूसरों को भी हमसे भी अनुभव होता है। आप सभी प्रवृत्ति में रहते हैं, कार्य व्यवहार में रहते हैं, 24 घंटे आप अन्य आत्माओं के संपर्क में आते रहते हैं। यदि मेरी आत्मिक दृष्टि वृत्ति है तो मेरी दृष्टि से जो मेरे संपर्क में आने वाले हैं उन्हें रूहानियत का अनुभव होगा, उन्हें महसूस होगा कि हमारी दृष्टि शुद्ध दृष्टि है, हमारी दृष्टि शुभ भावना की दृष्टि है, यानी और लोगों से हम भिन्न हैं। ऐसे कुछ लोगों को सुनने को मिलता भी होगा, कई भाई बहने कहते भी हैं जब आपसे मिलते हैं तो कुछ अलग अनुभव होता है। क्यों अलग अनुभव होता है? क्योंकि हमारे वाइब्रेशन रूहानियत के वाइब्रेशन से और आत्मिक दृष्टि में पवित्रता के वाइब्रेशन से, रूहानियत पवित्रता से आती है, चेहरे पर वो झलक फलक दिखती है पवित्रता की। जो ब्राह्मण आत्माएं जितना अधिक इस अभ्यास में रहते हैं, जितना वो देह अभिमान से न्यारे रहते हैं, उतना रूहानियत दिखाई देती है। और जब वो रूहानियत अनुभव होती है तो आपकी पवित्रता उन आत्माओं को प्रभावित करती है, न कि उनके वाइब्रेशन हमें असर करते हैं। अगर हमारे वाइब्रेशंस पवित्र नहीं है तो उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि हम कलयुग की दुनिया में रहते हैं ना, तो हावी क्या है, हावी कौन सा वाइब्रेशन है? तमो प्रधानता का, है ना। दुनिया तो तमो प्रधान है और तमो प्रधानता की भी अति है। तो यदि मैं आत्मा पावरफुल हूं तो मैं उस वाइब्रेशन को चेंज कर लूंगी, और अगर मैं पावरफुल नहीं तो वो मेरे को चेंज कर लेंगे, ऐसा कहें कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। फिर हम वश हो जाएंगे, फिर हम सोचेंगे क्या करें, होता ही नहीं है। अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे खुद के अटेंशन की कमी है। बाबा कहता है अगर मैंने आत्मिक स्थिति नहीं बनाई अपनी इस देह अभिमान की दुनिया में, कहीं ना कहीं मेरा मन देह को टच कर लेगा। और बाबा कहता है देह को टच करना माना सांप को टच करना, और आप सांप को टच करेंगे तो वो जरूर काटेगा, और काटेगा माना उसका विष चढ़ने वाला है ना। और फिर उस विष को बचाने के लिए, उस व्यक्ति को बचाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, समझ सकते हैं कि खुद की स्थिति कितनी गिरती है और उस स्थिति से अपने आप को फिर से स्व स्थिति में लाने में कितनी मेहनत आत्मा को करनी पड़ती है। लेकिन अगर हमने अमृत वेले से ही अपने आप को सेट कर दिया, मैंने सिर्फ इस देह का आधार लिया है, बाबा ने हमें समझ दे दी मैं आत्मा परम धाम से सृष्टि पर आई हूं और ये तन अब मेरा नहीं है, कहते तन मन धन सब कुछ तेरा, बाबा को हमने समर्पित किया है ना, किया है नहीं किया है, हम तन मन धन के ट्रस्टी हैं या नहीं है? तो यदि मैं तन मन धन की ट्रस्टी हूं तो ये तन बाबा ने मुझे सेवा के लिए दिया है, इसमें मेरापन नहीं होना चाहिए मेरा। और अगर मेरापन नहीं है तो यानी कर्म करने के लिए, सेवा के लिए मैंने इन कर्म इंद्रियों का आधार लिया, इस तन से मैंने कार्य किया, सेवा की, और जैसे ही कार्य पूरा हुआ हम न्यारे हो गए, अपनी आत्मिक स्थिति में, आत्मिक शांति में, आत्मिक सुख की स्थिति में मन को हम स्थित कर लें। हम सुनाते हैं ना, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, ये दो शक्तियां निरंतर चाहिए। बनाया कछुए का, जब चाहे कर्म इंद्रियों को यूज कर लिया, जब चाहे कर्म इंद्रियों को समेट लिया और सुरक्षित हो गया। तो इस संसार से न्यारे होने का मतलब क्या है? कर्म इंद्रियों से न्यारे होने का मतलब, देह से न्यारे होने का मतलब, संबंधों से न्यारे होने का मतलब। बाबा भी कहता है देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो पहले तो न्यारा होना पड़ेगा ना, देह सहित, अपनी देह भी और दूसरों की देह भी। देह के संबंध माना वो संबंधों में भी जो मेरा मेरा है उसके बजाय उसको भी परिवर्तन करना है ना? तो सारा दिन अगर मेरा अभ्यास ही रहता है, मेरा टेंशन रहता है, इसको बाबा कहता है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। कर हम सब कुछ लौकिक रहे हैं, लेकिन परिवर्तन किस में करना है? अलौकिक स्मृतियों में परिवर्तन करके लौकिक कार्य करो। पहले भी हम करते थे लेकिन दैहिक स्मृतियों से कर रहे थे, अभी भी हम कर रहे हैं लेकिन अब बाबा की श्रीमत प्रमाण जो स्मृतियां मिली हैं उसे करना है। पहले मैं कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरा है, ऐसा समझकर करते थे। अब क्या समझना है? अब कौन करवा रहा है? मैं कर रहा हूँ नहीं, कौन करवा रहा है? बाबा मेरे द्वारा करवा रहा है, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। अब ये मेरा कार्य नहीं है, ये बाबा का कार्य है, ये बाबा की सेवा है। हम जहाँ भी हैं, चाहे लौकिक कार्य भी कर रहे हैं तो भी क्या कर रहे हैं, तो भी क्या कर रहे हैं, बाबा की सेवा। इन आत्माओं की सेवा के निमित्त बाबा ने मुझे रखा है। तो जितना हम सारे दिन में अपनी स्मृतियों का परिवर्तन करेंगे तो फिर हमें अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना सहज होगा, नहीं तो अनेक प्रकार के बोझ आत्मा पर आ जाते हैं, अनेक प्रकार के कर्म बंधन में आत्मा फंसती है। क्योंकि देह अभिमान माना, देह अभिमान माना कर्म बंधन, ऐसे ही कहेंगे। लेकिन आत्मिक स्थिति माना कर्म संबंध, वो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव हमें कराता है। और जब हम सारे दिन इस अभ्यास को पक्का करते हैं, तब जब भी हम योग में बैठेंगे हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो योग में भी मेहनत करनी पड़ती है। कई भाई बहने योग में बैठते हैं तो युद्ध करते हैं। किस बात की युद्ध करते हैं? मन बहुत जल्दी जो सारे दिन के आपके कर्मों के हिसाब किताब बन गए उनसे बाहर नहीं निकल पाता। इसने ये कह दिया, उसने ये कर लिया, उसने जैसे आज की मुरली थी ना बाबा की, बहुत प्रैक्टिकल मुरली थी। सुनिए आज की मुरली क्या कहा बाबा ने, कितना जल्दी मन पर चिंतन में जाता है, पता भी नहीं चलता हमको कि हम उसमें फंसे होते हैं। उससे मन को निकालना योग के समय बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा फुर्सत मन को उसी समय मिलती है। और तो टाइम आप काम में बिजी हैं तो ज्यादा नहीं सोच पाता है, लेकिन जैसे ही खाली बैठे, पहले क्या आने वाला है, पहले आत्मा को हल्का बनाना पड़ेगा, तो उस बोझ से पहले मुक्ति पानी पड़ेगी, तो पहले वो सामने आ जाते हैं। और फिर योग लगता नहीं है, बाबा तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते हैं, बाबा से रूहानी करने की कोशिश करते हैं। तो जो ज्वालामुखी योग की स्टेज होनी चाहिए, जो बाबा कहते हैं पावरफुल योग हो, लगन में मगन हो जाए आत्मा, बाबा की याद में समा जाए, और वो स्थिति में जितना समय हम मन को स्थित करना चाहें उतना समय कर पाएं, तब हम कहेंगे कि हम सच्चे योगी हैं। तो अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो यदि सारे दिन मेरा मन शुद्ध स्मृतियों में रहा, अलौकिक स्मृतियों में रहा, तो मन स्वतः शक्तिशाली होता है, फिर हमें युद्ध नहीं करना पड़ता। क्योंकि कर्म बंधन हमने बनाया ही नहीं जो हमें चुकतू करना पड़े पहले बैठ करके, है ना। सीधा मन उड़ता है, उड़ती कला का जो अनुभव हम करते हैं, जैसे कहते हैं एरोप्लेन उड़ता है तो नीचे वाले कोई पहाड़ और विघ्न उसके लिए कोई विघ्न नहीं होते, जो चढ़ता है चलता है उसके लिए पहाड़ बहुत बड़ी बाधा है, उसे पहाड़ चढ़ के पार करना तो हांफने लगते हैं हम, ऐसा हो जाता है ना, लेकिन उड़ गए खत्म, वो पहाड़ है ही नहीं। तो वो बाबा कहता है कि आत्मिक स्थिति माना, आत्मिक स्थिति है हमारी माना सीधी उड़ती कला का हम अनुभव करते हैं और हम बाबा के पास पहुंच जाते हैं। और परम धाम में भी, परम धाम में भी पहुंच कर बाबा के पास बाप समान स्थिति का अनुभव करते हैं, क्योंकि निराकारी स्थिति शिव बाबा के समान स्थिति है, शिव बाबा भी ज्योति बिंदु रूप है और मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु रूप है, शिव बाबा गुणों का सागर है, मैं आत्मा भी गुणों की स्वरूप हूँ, तो सर्व गुणों का सार मैं आत्मा अनुभव करती हूँ, यानी संपन्न स्थिति का हम अनुभव करते हैं, जिसे हम बीज रूप स्थिति कहते हैं। और उस बीज रूप स्थिति में जब बाबा से कनेक्शन होकर सर्व शक्तियां आत्मा अपने में अनुभव करती हैं, तो विकर्म विनाश होते हैं, पास्ट जन्मों के विकर्म जो आत्मा में हैं वो भस्म होते हैं। वो हम एग्जाम्पल बताते ना लोगों को, जब सूरज के सामने हम एक लेंस रख देते हैं तो किरणें फोकस होकर उसको जला देती हैं, वैसे नहीं जलेगा वो, जैसे आग में हमने कोई चीज डाली तो ही वो भस्म होगा, यानी उसका वो रूप बदल जाएगा, उस रूप में कभी भी वो चीज आपको मिलने वाली नहीं है। ये भी योग अग्नि है, तभी बाबा उसको योग अग्नि कहता है, यानी जब मैं इस पावरफुल स्थिति में स्थित होती हूँ परम धाम में बाबा के साथ, बीज रूप स्थिति में बाप समान स्थिति में मैं हूँ, तभी मुझ आत्मा के संस्कार पवित्र, ये परिवर्तन होते हैं और मेरे पवित्र संस्कार दैवी संस्कार इमर्ज होते हैं। और उस योग के बाद जब आप अपने कर्म व्यवहार में आते हैं तो आप खुद अपने आप महसूस करते हैं कि मेरा स्वरूप पहले से बदला हुआ है, मैं वो नहीं हूं। और नहीं तो हम कितने सालों से योग कर रहे हैं फिर भी संस्कार नहीं बदलते हैं, क्यों नहीं बदल रहे हैं? मेहनत करते हैं फिर भी, बाबा कहते हैं ना डाली काट दी जड़ नहीं काटी, तो क्या होता है जैसे ही वातावरण परिस्थिति का पानी मिलता है फिर से वो उग जाता है, फिर सोचते हैं मेहनत तो बहुत की थी लेकिन फिर भी, तो क्या करना है, काटना भी नहीं है सीधा ही भस्म कर देना है ताकि उसका नामो निशान न रहे। तो नामो निशान कब नहीं रहेगा, जब मैंने योग अग्नि से उसको भस्म किया है तब स्वरूप परिवर्तन होगा। तो योग की वो पावरफुल स्थिति का अनुभव वो हम तब कर पाएंगे जब निरंतर मेरी आत्मिक स्थिति का अभ्यास होगा, और नहीं तो बीच में ही रहेंगे। बाबा कहता है जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे जो स्थिति चाहे वो मैं बना सकूं, ये है कंट्रोलिंग पावर, इसको एकाग्रता कहेंगे। यानी अगर मैं फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना चाहती हूँ तो मेरा मन फरिश्ता स्थिति में रुक जाए, मेरा मन सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ है। और यदि मैं सोचती हूँ कि 15 मिनट मुझे फरिश्ता स्थिति में ही रहना है तो वो 15 मिनट मैं फरिश्ता स्थिति में रह पाऊं, ऐसे नहीं कि एक सेकंड मैंने सोचा मैं वहां हूं और दूसरे सेकंड नीचे। जैसे दुनिया वाले कहते हैं ना बहन जी मन नहीं लगता योग में, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन टिकता ही नहीं है, एक संकल्प के बाद ही मन भटक जाता है। तो हम ब्राह्मणों की वो स्थिति तो नहीं है, हम कोई नए योग करने वाले, योग का अभ्यास करने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी क्या इतना समय मैं अपने मन को एक संकल्प में रख सकती हूँ? इसीलिए कमेंट्री कराई जाती है कि जैसा विचार दिया जा रहा है उस विचार में ही मेरा मन स्थित हो जाए और संगठन रूप में स्थित हो जाए। मैं अकेले इंडिविजुअली तो अभ्यास कर रही हूँ वो अलग बात है, लेकिन हम सब मिलकर एक विचार में अगर स्थित हो जाते हैं तो वो वायुमंडल बहुत पावरफुल होता है और उसका प्रभाव अपना होता है। और बाबा कहता है कि वृत्ति के द्वारा हमें वायुमंडल बनाना है। जिस भी स्थान पर हम रहते हैं वहां भी हमारी जिम्मेवारी है, चाहे हम घर में रहते हैं चाहे हम आश्रम पर जाते हैं, उस स्थान के वायुमंडल को पावरफुल रखना, उस स्थान के वायुमंडल को अव्यक्त रखना, उस स्थान के वायुमंडल को शांत रखना किसकी जिम्मेवारी है? हम आत्माओं की जिम्मेवारी है, ताकि जो आने वाले हैं वो आते ही उसे अनुभव करें। जैसे मधुबन में आत्माएं आते ही अनुभव करती हैं, कहना नहीं पड़ता है, कैसी भी आत्मा आ जाए उसे शांति का अनुभव ना हो ही नहीं सकता है, हो सकता है? उसे पवित्रता का अनुभव ना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इतनी पावरफुल आत्माएं यहाँ रहती हैं, उनसे वो वायुमंडल बना हुआ है। लेकिन हम दुनिया में रहते हैं, यहाँ तो शिव बाबा भी अवतरित होते हैं, उनके भी वायुमंडल मतलब उनका भी उस प्रभाव है उसमें, लेकिन हम जो पूरा दुनिया के वायुमंडल में रहते हैं, जो विकारों का वायुमंडल है, उसमें उस स्थान के वायुमंडल को पवित्र रखना, उस स्थान के वायुमंडल को पावरफुल रखना, उसके लिए मेरी वृत्ति पहले कैसी चाहिए? तो अब वो सेवा बाबा हमसे चाहते हैं। बाबा कहता है अभी वाणी की सेवा से परिवर्तन का समय है ही नहीं, लोग आपसे ज्यादा होशियार हैं, आप किसी को ज्ञान सुनाने जाएंगे वो आपको पहले सुना देंगे, है या नहीं? तो वाणी से परिवर्तन करने का अब इतना समय नहीं है, लेकिन अब परिवर्तन करने का समय है स्वरूप से। आपका स्वरूप क्या कहता है, आपका जीवन क्या कहता है, आपका व्यवहार क्या कहता है, उसके आगे वो चुप हो जाएंगे, क्योंकि जीवन नहीं है लोगों का, ज्ञान बहुत है ना? तो वो कब होगा? वो तब हो पाएगा जब हमारा अटेंशन अपनी देही अभिमानी स्थिति पर अधिक से अधिक होगा। और अशरीरी स्थिति एक इंजेक्शन का भी काम करती है। बाबा हमेशा कहते हैं कि ये हमारा अंतिम जो जन्म है इसमें हमें सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं और अभी हमें संपूर्ण पवित्र बनकर के घर लौटना है। तो हिसाब किताब तन के द्वारा भी चुकतू होते हैं, चारों प्रकार से चुकतू होते हैं, तन मन धन संबंध। लेकिन जब तन से हिसाब किताब चुकतू होते हैं तो सबसे ज्यादा कठिन समय होता है, क्योंकि वो हिसाब किताब का दुख हमें ही भोगना पड़ता है, उसमें कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरे हिसाब किताब में फिर भी लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन तन के हिसाब किताब में, तो यहाँ जब वो हिसाब किताब हमारे सामने आते हैं उसको हम सूली से कांटा ना, सूली जैसा हिसाब किताब है। आज कैसी कैसी बीमारियां हो जाती हैं दुनिया में, और कई बीमारियां तो ऐसी हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है, और कई बार तो है ना डॉक्टर भी डरा देते हैं कि इतना कम टाइम है आपके पास। अब ऐसा सूली जैसा हिसाब, हाँ सूली माना मरने जैसा हिसाब किताब है, वो कांटे जैसा अनुभव हो सकता है? हाँ सूली से कांटा बाबा कहता है हो सकता है, बोलो हो सकता है नहीं हो सकता? हाँ किसी ने ऐसा अनुभव किया है? हाँ किया है, हमने किया है। मेरा कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बड़ा, हाईवे पर। और ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि हाईवे पर एक्सीडेंट होना माना बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना, और मैं सेवा से आई थी, कहीं हम गए थे सेवा पर, वहां से लौटे थे, और अहमदाबाद से यहाँ बाय रोड आना पड़ता है, तो आबू रोड के नजदीक ही थे, ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन मैं थकी हुई थी तो मुझे नींद आ गई थी, मैं सो रही थी, सामने वाली सीट पर ही बैठी थी, सो रही थी, और उस दौरान वो एक्सीडेंट हुआ, और मैं नींद में थी इसलिए मैंने वो सीन देखा ही नहीं, क्योंकि नींद में थी इसलिए सीधा बेहोश हो गई। पर कहने का मतलब ये है कि मैं बाबा की याद में थी, जब मैं बैठी हुई थी तब बाबा की याद में थी, और कब मुझे नींद आ गई मुझे पता नहीं, और उसी में वो एक्सीडेंट हुआ और मैं सीधा बेहोश हुई, और फिर सब लोगों ने मुझे लाया हॉस्पिटल में, ट्रॉमा सेंटर है अपना वहां नजदीक में, तो वही हॉस्पिटल है आबू रोड के, तो ट्रॉमा सेंटर में लाया गया, और सब डॉक्टरों ने तब तक जो कुछ भी किया, उनको इंजेक्शन वगैरह देना है, स्टिच वगैरह, जो भी चोट लगी थी उसमें, हेड इंजरी हुई थी उसमें स्टिचेस वगैरह दिए, उसी की वजह से बेहोश हो गए थे। एक घंटे के बाद मुझे होश आया, तो मैं सोचने लगी कि मैं कहाँ हूँ, और फिर मेरे को जैसे ना बाबा, जैसे ही मुझे होश आया, तो क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि बाबा कैसे हमें मदद करते हैं, मैं बाबा की याद में थी, अब जो भी मेरा कोई हिसाब किताब था वो मेरे सामने आया, लेकिन मेरे को एकदम ऐसे हल्कापन लगा, जैसे मुझे लगा ही नहीं कि मुझे कुछ हुआ है, और मैंने जब वो सीन देखा, मेरे सामने सभी जो भी सीनियर भाई बहने हैं अपने मधुबन के, वो सब थे मेरे अराउंड, क्योंकि जैसे ही सबको पता चला ऐसा हुआ है तो सब पहुंच गए फटाफट हॉस्पिटल में, तो मैं ऐसे सोचने लगी कि ये सब क्यों खड़े हैं यहाँ पर, ना मेरे को ये नहीं समझ में आया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं सोचने लगी ये सब क्यों खड़े हैं। फिर मेरी नजर अपने कपड़ों पर गई तो देखा सारे कपड़े खून से लथपथ थे, तब मुझे समझ में आया कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन मुझे इतना भी दर्द नहीं और इतनी भी फीलिंग नहीं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, और अंदर से एक बहुत स्ट्रांग टचिंग थी कि सब ठीक हो जाएगा। वो कैसे थी पता नहीं, वो बाबा की टचिंग थी, लेकिन जो देखने वाले थे मुझे, जो मेरे सामने खड़े थे, उनके चेहरे पर डर था, क्योंकि वो पता तो चलता है ना हमको, तो अब इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, नेचुरली उसमें कोई भी डॉक्टर श्योरिटी के साथ ये नहीं कहता कि बचेंगे या मरेंगे, है ना, वो कहेंगे इतने घंटे निकल जाएंगे, तो इतने घंटे ऐसा, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मुझे भी पता है कि हम भी लोगों को क्या कहते हैं जब कोई ऐसे मरीज आते हैं, तो हम कहेंगे नहीं 72 घंटे निकाल लेगा तो कहेंगे खतरे से बाहर है, अगर 72 घंटे नहीं निकाले तो खतरे में है, तो ऐसे ही कहते थे डॉक्टर की भाई हाँ कुछ नहीं कह सकते, अभी तो अब एक घंटा ही हुआ है एक्सीडेंट हुए, और अभी सीटी स्कैन वगैरह भी नहीं हुआ, सिर में अंदर कितनी चोट है पता नहीं, चलो होश में तो आ गए, जैसे ही मैं होश में आई तो मेरे टेस्ट वेस्ट करने लगे, डॉक्टर पूछने लगे कि मैं बोल रही हूँ, कितना देख पा रही हूँ, कितना सुन पा रही हूँ, मतलब अंदर की चोट कितनी है, लेकिन वो सब ठीक था। फिर सिटी स्कैन के लिए ले गए, और अब ट्रॉमा सेंटर में अपने सिटी स्कैन है, तो सिटी स्कैन किया, उसका रिपोर्ट करवाया, तो कोई इंटरनल इंजरी नहीं थी, माना अंदर ब्रेन सही सलामत था, सिर्फ बाहर बाहर की चोट थी, तो देखो कितना बड़ा बाबा ने उसे पहले ही, मतलब कहां बाबा बच्चों को अपनी गोद में उठा लेते हैं, नहीं तो बचने की तो कोई उम्मीद नहीं थी, वो ऐसा एक्सीडेंट था। और बाद में 3 दिन आईसीयू में रखा गया, तो मुझे तो बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे बाबा ने अपनी गोद में रखा है, ऐसी अशरीरी स्थिति का अनुभव तो मुझे कभी मेहनत से भी नहीं हुआ, जितना अशरीरी स्थिति का अनुभव मुझे वो 3 दिन आईसीयू में हुआ, मतलब मैं एक अनुभव सुना रही हूँ अपना, और मुझे जरा दर्द नहीं, लोग मेरे को पूछते थे बहुत दर्द हो रहा होगा, हाँ इतनी पट्टियां बंधी हुई, तो मैंने कहा कि सुई की नोक के बराबर भी दर्द नहीं है, जरा भी दर्द की फीलिंग नहीं थी मुझे। और 3 दिन के बाद आईसीयू से बाहर आए, कुछ दिन रहे हॉस्पिटल में, और 10 दिन के अंदर अंदर समझो ठीक होकर के वापस अपने स्थान पर। कितना समय तक लोग मुझे पूछते थे, बहुत बड़ा एक्सीडेंट था आपका, हाँ कुछ तो तकलीफ होती होगी आपको। मैंने कहा कुछ भी तकलीफ नहीं। तो इसको कहेंगे सूली से कांटे का अनुभव करना। इसलिए मैंने बताया कि हमें वो अनुभव है कि कैसे बाबा हमें सूली से कांटा अनुभव कराता है। कैसा भी हिसाब किताब हमारा सामने आ जाए, मरने जैसी ही कंडीशन कहेंगे ना, एक नया जन्म फिर से मिला, एक बाबा के बने तब नया जन्म मिला, और ये भी ऐसा ही था कि जैसे एक बाबा ने फिर सेवा के लिए एक नया जन्म हमें दे दिया। नहीं तो हिसाब किताब तो ऐसा था कि जाने वाले थे, पर भगवान को सेवा करानी थी तो वो नया जन्म मिल गया। तो ऐसे बहुत बातों में मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन बहुत लोगों के जब हमने इलाज किए, तभी भी बाबा जो हमें मनसा सेवा की बात कहते हैं कि कैसे हम अन्य आत्माओं को भी सहयोग कर सकते हैं। तो मैंने ये देखा कि यदि हमने उस पावरफुल स्थिति में स्थित होकर के निस्वार्थ भाव से यदि आत्माओं के लिए भी वो किया, तो उससे भी उनको मदद मिली और वो खतरे की स्थिति से बाहर आ गए। दो तीन आत्माओं का तो मुझे अनुभव है जो बिल्कुल डेथ की स्टेज पर थे, जिसको हम नियर डेथ कहते हैं। लेकिन क्योंकि हमने सोचा कि बाबा कहता है योग का प्रयोग करो, तो प्रयोग करके देखते हैं क्या सचमुच उनसे उन आत्माओं को उन दुआओं से कुछ फायदा होता है। तो हमने देखा कि सचमुच वो असंभव जैसी बात संभव हो गई, जो सोचते नहीं थे कि ऐसा हो सकता है। फाइनल जवाब दे चुके थे उन लोगों को और उनके रिश्तेदार भी उस हिसाब से आए हुए थे, लेकिन उनका जीवन बच गया। लेकिन फिर वो विधि है, विधि से सिद्धि है, बिना विधि के सिद्धि नहीं है। अगर हम उस विधि पूर्वक करते हैं तो फिर हमें सफलता मिलती है, और वो विधि हमारी यही है कि पहले मेरी स्टेज क्या होनी चाहिए, आत्मिक स्थिति में, शुद्ध स्थिति में, बाबा के साथ पावरफुल कनेक्शन है मेरा, तब मैंने जो वाइब्रेशंस दिए वो उस आत्मा को सफलता का अनुभव कराते हैं, या मुझे भी वो सफलता का अनुभव कराते हैं। ब्रह्मा बाबा का हम हिस्ट्री सुनते हैं, बाबा अशरीरी स्थिति का अभ्यास विशेष रूप से करते थे, 2:30 बजे उठकर बाबा करते थे। अभी भी 2 दिन पहले मुरली में था, हमें कितना घंटा योग करना चाहिए, 8 घंटा होता है हमारा 8 घंटे का चार्ट, चलो बैठकर तो नहीं कर सकते, लेकिन चलते फिरते भी अगर बाबा के साथ बाबा की श्रीमत अनुसार भी स्मृतियों में हम रहते हैं, जैसे मैंने कहा लौकिक को अलौकिक में हम बदलें, तो भी हमारा वो योग में ही काउंट होता है, वो हम कर सकते हैं। या समय अनुसार जैसे संबंध की बाबा से आवश्यकता है उस संबंध का मैं अनुभव कर लूं। जब हम मुरली सुन रहे हैं तो बाबा मेरा शिक्षक है, बाबा मुझे खुद मुरली सुना रहे हैं और मैं आत्मा सुन रही हूँ। आत्मिक भान से मुरली सुनना और यूं ही मुरली सुनना फर्क होगा ना। आत्मा समझ के एक तो हम होता है कि ठीक है मेरा नियम है रोज मुझे मुरली सुनना आए और नियम प्रमाण अपनी मुरली सुन ली, लेकिन मैं आत्मा मुरली सुन रही हूँ, स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं, स्वयं भगवान मेरे शिक्षक हैं, उस भाव से मैंने मुरली सुनी तो वो मुरली जितना मुझे समाएगी और जितना मुझे याद रहेगी, जितना मेरे व्यवहार में आएगी, फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो उतना उसको उस स्मृति को अगर महत्व देंगे तो वो हमारा 1 घंटा मुरली सुनना भी हुआ और 1 घंटा योग भी हो गया, क्योंकि उस योग की स्थिति में मैंने मुरली सुनी। और ऐसे ही कर्म करते हुए भी बाबा मेरा साथी है, जैसे दोस्त है, खुदा दोस्त है, साथी है, कर्म करते हुए हम उसे अपने साथी के रूप में अनुभव कर सकते हैं। तो अगर मैंने अपने साथी को साथ ले लिया तो कर्म भी श्रेष्ठ होगा, कर्म में भी शक्ति भर जाएगी, उस कर्म का प्रत्यक्ष फल भी मुझे खुशी देने वाला होगा, सफलता देने वाला होगा, और साथ साथ मेरा योग का चार्ट भी जमा हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने योग को उतना बढ़ा सकते हैं। और जो बाबा ने किया अपने जीवन में, ब्रह्मा बाबा ने कर्म योगी बन करके हर कर्म किया, तो जो भी बाबा के सामने आते थे ना, वो भी अशरीरी हो जाते थे। आज हम दादियों का अनुभव सुनते हैं, या जो भी हमारे बड़े भाई हैं, उनके पहले अनुभव बाबा के सामने क्या थे? बाबा के सामने जाकर के बैठे और अशरीरी हो गए। बाबा के सामने वो कोई व्यक्त भाव की बातें नहीं कर पाते थे। वैसे दादियां सुनाती, हम बहुत सोचकर जाते थे बाबा को ये समाचार सुनाएंगे, ये सुनाएंगे। कई बार कई जिज्ञासुओं की रिपोर्ट भी होती है, मतलब अब नियमित टीचर हैं तो उनको बड़ों को सारा चार्ट देना होता है सेवाओं का, मालूम। तो सोचते थे कि हम ये कहेंगे, लेकिन बाबा की स्थिति देख करके बोल ही नहीं पाते थे। ऐसा होता है कोई हमसे बहुत, अब जैसे मानो मैं प्रधानमंत्री से मिलने जा रही हूँ, तो क्या सोचेंगे, क्या बातें करेंगे उससे, बहुत लिमिटेड। जो बहुत काम की, बहुत सार की बात है ना, वही हम उनको कहेंगे। फालतू बातें करने का उनके पास टाइम नहीं है, तो हम कट शॉर्ट करेंगे, क्या 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 क्या, इतना ही बस। तो ऐसे ही जिनकी स्थिति ऊंची होती है, हाँ, उनसे हम बात करेंगे, हम सोचेंगे कि ये सारी बातें, लेकिन आप उनके सामने जाएंगे ना, तो उनकी स्थिति के अनुसार वो सब फालतू बकबक नहीं कर पाएंगे, चुपचाप आपको वही कहना होगा जो सार की बात है। बाबा के सामने भी ऐसा ही होता था। और इवन जब अव्यक्त बाप दादा भी मिलते थे, मुझे याद है जब बाबा पर्सनल मिलते थे सबसे, वो समय भी था एक जब एक एक से बाबा मिलते थे, आपने भी सुना होगा, और एक एक को बाबा दृष्टि देते थे। तो एक बार मैंने भी सोचा, मेरे मन में काफी प्रश्न थे, मैं नई नई ज्ञान में आई थी उस समय, मेरे स्टूडेंट लाइफ थी और मैं साइंस की स्टूडेंट थी, तो नेचुरली है ना, हम छोटी छोटी बातों में प्रश्न करते हैं, इतना जल्दी हम कन्विंस नहीं हो जाते। तो बहनों से नहीं पूछती थी मैं, क्योंकि मैंने पूछ लिया था बहनें कितना पढ़ी हैं, तो मैं समझ गई कि मैं इनसे पूछूंगी तो मुझे इनसे कोई मेरे लायक जवाब नहीं मिलने वाला। ऐसा ही होता है, जो आजकल के लोग होते हैं ना, वो पुराने लोगों से अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं। मतलब मैं बता रही हूँ कि हम इस पीढ़ी के हैं, तो हमें भी ऐसे ही लगता था कि ये मुझे क्या जवाब देंगे, ऐसे मैं सोचती थी। तो मैंने सोचा कि मैंने बहन से पूछा, क्या हम बाबा को मिलेंगे तो बाबा से हम बात कर सकते हैं? मैं पहली बार बाबा से मिलने गई थी उस समय, जब अव्यक्त बाप दादा से मिलना था, तो मैंने किसी से कोई बात नहीं की थी जो मेरे मन में सवाल चलते थे। तो मैंने सोचा मैं सीधा वही बात करूंगी जो भी मुझे पूछना है। तो मैं बाबा के सामने जब आने का मेरा टर्न आया, और जब मैं बाबा के सामने गई, तो मेरी यही हालत हुई कि मैं सोच रही थी मैं ये पूछूंगी, सब साफ कहां गया पता नहीं। और बाबा ने दो शब्द मुझे कहे, वो भी मुझे समझ में नहीं आए। और मैं उतर के आई और मैंने बहन जी को बोला कि बहन जी, बाबा ने ये कहा, इसका क्या मतलब बताइए ना, अपने आप को इतना होशियार समझ। मैं तुम्हें एक बात कह रही हूँ कि जब हमारी स्थिति अव्यक्त होती है, तो हमारे सामने आने वाली आत्माएं भी अपने आप उस स्थिति का अनुभव करते हैं और उनका व्यर्थ समाप्त हो जाता है। इसी को बाबा कहता है संस्कार से संस्कार बदलना। क्यों? किसी संत के पास जाते ही हमारा मन पवित्रता का अनुभव करता है। जैसे इन सब बातों को लोग कहते हैं, सत्संग के महत्व को बताते हैं, उसका महत्व यही होता है कि उनके जो पावरफुल वाइब्रेशंस हैं, वो हमें वही अनुभव कराते हैं। तो ब्रह्मा बाबा से हमारे जो भाई बहने थे, वो ऐसे ही अनुभव करते थे। और जो बोल उस समय बाबा ने उनके लिए बोले, वो वरदान बन गए। आज भी वो कहते हैं बाबा ने उस समय ये कहा और सचमुच हमारे जीवन में वही हुआ। हम तो ब्रह्मा बाबा से नहीं मिले, मैं तो नहीं मिली ब्रह्मा बाबा से, लेकिन हम दादियों के समीप बहुत रहे। तो मैंने कई बार महसूस किया, शुरू शुरू में जैसे हम मैंने बताया जैसे आपको कि दिमाग बहुत प्रश्न वाला ना, तो ऐसे ही जब मैं मधुबन में यहाँ रहने लगी, यहाँ पर आकर के हम सेवा करने लगे, तो भी कई बातों में ना प्रश्न होता था मन में। अब यहाँ आ गए, अब डॉक्टरी कर रहे हैं, मानो मैं यहाँ डिस्पेंसरी में सेवा करती थी। शुरू शुरू में हॉस्पिटल नहीं बना था, अभी प्रोसेस में था, बन रहा था। तो सुबह से लेकर रात तक पेशेंट ही देखना है, तो मैं सोचती थी क्या मैं इसीलिए आई हूँ, हम सारे दिन शरीर ही देखते, मतलब ये मेरी थिंकिंग थी। हम उस समय हमारे अंदर पूरी श्रीमत आ जाए ऐसा तो एकदम नहीं होता है जब हम नए होते हैं, और मैं भी अभी बहुत यंग थी उस समय, जस्ट पढ़ाई करके मैं यहाँ आ गई। तो बाबा के प्रति मेरा बहुत निश्चय था और समर्पित होने का लक्ष्य था, और मेरे लौकिक वालों का विरोध था, तो उनसे बचने के लिए कि कहीं मैं जाकर के अपना काम कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ, मैं यहाँ आ गई। पर फिर मेरे को ये लगता था कि मैं तो सुबह से रात तक मरीज ही मरीज देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ सीजन चलती थी, एक ही पांडव भवन होता था उस समय, ज्ञान सरोवर नहीं था, शांतिवन नहीं था, तो बाबा का सारा जो है पूरा सीजन पांडव भवन में चलता था, और सिर्फ दो ही डॉक्टर थे यहाँ, एक पुरानी डॉक्टर हमारी बहन थी और एक मैं नई एडिशन हुई थी उसमें, तो मेरे को ही दौड़ाते रहते थे सारा दिन, हाँ इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, तो मेरे को ना तो योग करने का टाइम मिलता था, सुबह सुबह अमृत वेले भी कोई मरीज होता था, मेरा अमृत वेला भी मिस। अब मरीज को देखने से तो आप मना नहीं कर सकते। तो ऐसे मतलब ज्ञान योग के टाइम भी मरीज देखो ऐसे, तो मैं ना चिढ़ गई अच्छी तरह से, मैंने बोला मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे तो मेरा ज्ञान योग भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो मैं गई दादी जानकी के पास। दादी जानकी सीजन में यहाँ रहते थे, तो मैंने दादी को बोला कि दादी ऐसे है और मेरा मन यहाँ नहीं लगता है, मैं इतने मरीज नहीं देख सकती हूँ, सुबह से रात तक मरीज ही मरीज देखो, तो मुझे सेंटर पर जाना है, अब यहाँ तो डॉक्टर चाहिए था। तो दादी ने मुझे समझाया, दादी ने मुझे कहा देखो जब मैं बाबा के पास आई तब बाबा ने मुझे नर्स रखा और मैंने मरीजों की सेवा की, बहुत प्यार से सेवा की। आप सुनते होंगे दादी जानकी के अनुभव, दादी जानकी बहुत बार ऐसे सुनाती हैं जिन्होंने भी दादी जानकी के क्लासेस किए हैं। तो दादी ने कहा कि बाबा मेरे को मिलने आता था, क्योंकि बाबा को मरीजों को देखना होता था जो भी बीमार हैं यज्ञ में, तो बाबा अपनी जिम्मेवारी समझते थे ना कि मुझे उन बच्चों को मिलना है, वो बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तो बाबा मुझे खुद पूछते थे और खुद मिलने, लोग बाबा को मिलने जाते थे लेकिन बाबा हमारे पास आते थे। तो ये जो सेवा आप कर रही हो ये कोई कम सेवा नहीं है, और इससे आप बड़ों के नजदीक आओगी, बड़े आपको पूछेंगे, आपको बड़ों के पास नहीं जाना पड़ेगा। तब दादी ने मुझे समझाया, मतलब वो मुझे बात तब समझ में आई और वो दादी के बोल जैसे मेरे लिए वरदान बन गए, और मैंने हमेशा महसूस किया मैं जब भी मधुबन में, आज इतने साल हो गए मुझे रहते हुए, इस सेवा ने मुझे बड़ों के बिल्कुल नजदीक रखा, बड़ों के आसपास रखा ना। तो उनकी वो स्थिति, उससे वो जो बोलते हैं वो उससे हमें इतनी शक्ति मिल जाती है, वही बोल हमारे लिए जैसे वरदान हो जाते हैं, तो वो बाबा की स्थिति थी। तो बाबा कहते हैं जैसे शुरू शुरू में बाबा की अव्यक्त स्थिति से लोगों को साक्षात्कार होते थे, लोग शुरू शुरू ज्ञान में कैसे आए, ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार लोगों को घर बैठे होते थे। आज भी विदेशों में हमारे सेंटर कैसे खुले, कई विदेशी भाई बहनों को घर बैठे ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार हुए, वहां पर एंजल्स को बहुत मानते हैं, फरिश्तों को बहुत मानते हैं, इंडिया में फरिश्तों को नहीं मानते, देवताओं को मानते हैं, लेकिन विदेश में तो देवताओं की पूजा नहीं होती। तो बाबा के बच्चों ने जो फरिश्ता स्थिति से, अव्यक्त स्थिति से विदेश में सेवा की है, उसका वो यादगार वहां। आप भी यहाँ भाई बहने बैठे हैं, हो सकता है किसी को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ होगा, हुआ है किसी को, देखिए अभी भी है जो ऊपर लंबा हाथ उठाइए जिनको ब्रह्मा बाबा भी, कितने हैं, हाँ एक बार फिर से उठाइए, देखिए कम से कम 10 से भी ऊपर भाई बहने हैं। तो क्यों ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता है, हमारा क्यों नहीं होता है? ये होता है ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार, क्योंकि बाबा ने अपनी अव्यक्त स्थिति को इतना पुरुषार्थ करके बनाया और बाबा आज भी फरिश्ता रूप में बच्चों की सेवा में हैं, पर जीते जी बाबा ने फरिश्ता स्थिति बनाई अपनी। जैसे ही ब्रह्मा बाबा को संदेशी ने आकर के सुनाया कि सूक्ष्म वतन में एक बाबा मैंने आपके जैसा ही देखा, बिल्कुल आपकी कॉपी है लेकिन आपसे ज्यादा लाइट है उसमें, वो बिल्कुल लाइट का ही बाबा है, आप तो हड्डी मांस वाले हो, तो बाबा को समझ में नहीं आया क्योंकि पहली बार बाबा ने ये सुना कि कोई मेरा एक दूसरा स्वरूप ऊपर भी है। तो बोला संदेशी को, पूछ कर आओ वो कौन है। तो पूछा तो उसने कहा, मैं संपूर्ण ब्रह्मा हूँ और जो नीचे वाला ब्रह्मा है उसको मेरे समान बनना है तब वो ऊपर आएगा। तब बाबा ने उस दिन से ही बिल्कुल पूरा अटेंशन दे करके अपनी स्थिति को डबल लाइट स्थिति बनाया, अपनी स्थिति को फरिश्ता स्थिति, अव्यक्त स्थिति बनाया, यानी इस स्थूल जगत में, साकार जगत में रहते हुए जीते जी अपनी स्थिति को बाबा ने वो फरिश्ता स्थिति बनाया। वो भी बाबा हमें कहते हैं कि हमें भी कार्य व्यवहार में रहते हुए अपनी स्थिति को अव्यक्त रखना है, अपनी स्थिति को फरिश्ता स्थिति जैसा रखना है। फरिश्ता स्थिति डबल लाइट स्थिति है, डबल लाइट स्थिति समझते हैं ना, एक आत्मा की लाइट, आत्मिक स्मृति रहे और साथ साथ में ये शरीर भी स्थूल काया नहीं लेकिन ये शरीर भी लाइट का बना हुआ मेरा शरीर है, तो मैं स्वयं को प्रकाश की काया में अनुभव करूं। तो जब भी मुझे समय मिलता है मुझे ये अभ्यास करना है, और जितना हम अभ्यास करेंगे उतना उस स्थिति का हम सहज अनुभव कर पाएंगे। पहले अटेंशन, अटेंशन से अभ्यास होगा, ठीक है। तो भट्टी में जो आप यहाँ 3 दिन रहेंगे, पूरा आपको समय है, सारे कारोबार से, हर प्रकार के प्रवृत्ति से आप यहाँ फ्री हैं। बाबा ने आपको ये जो समय दिया है, हाँ, ये बहुत अमूल्य समय है मैं कहूंगी। और जितना अधिक योग की गहराई, ऊंची स्थिति, अव्यक्त स्थिति, बीज रूप स्थिति, जैसा अनुभव आप करना चाहो, ये वरदानी भूमि है बाबा की, वो अनुभव करो और कराओ, हाँ? खुद भी अनुभव करो और दूसरों को भी कराओ, क्योंकि यदि मैं शांत हूं तो मुझसे दूसरों को क्या अनुभव होने वाला है, शांति ही अनुभव होने वाली। अगर मैं सुख स्वरूप हूं तो मुझसे दूसरों को क्या मिलने वाला है, सुख मिलने वाला है। हाँ, मैं आनंद में हूं तो मैं आनंद ही दूंगी, जो मेरे पास होगा वही तो मैं दूंगी ना। हाँ, अगर मैं दुखी हूं तो मैं किसी को सुख नहीं दे सकती, पक्की बात है, दे सकूंगी। मैं ही अशांत हो रही हूं किसी बात से तो मैं किसी को शांति दे सकती हूं, नहीं। तो मेरी शांति स्वरूप की स्थिति तब बनेगी जब मुझे आत्मिक स्मृति है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव शांत है। तो वो शांति की का गहरा अनुभव, शांति का विशेष अनुभव समा जाए मुझ में ना, वो शांति का मेरा स्वरूप बन जाए, वो हम यहाँ करके जाए और फिर वो हमें वहां काम आएगा ना, वो हमें वहां अपने पुरुषार्थ में स्थिति में मदद देगा। ओम शांति। जिंदगी।